मैं विन्या से पूछूं, विनोबा के बचपन का नाम विन्या था, मैं उनसे पूछूं, 11 साल के अपने बेटे से पूछूं, देखो उन बेटे के पिता से तो नहीं, अपने बेटे से पूछूं कि तू क्या कहता है इस बारे में। और स्कूल से लौट के आया विन्या, मैं 1 लाख चावल गिन के भगवान के सामने चढ़ाऊं या कि तेरे पिता की बात मान करके तौल करके और हिसाब किताब से चढ़ाऊं। तो उन्होंने कहा कि मां तुम पूजा गणित के हिसाब से करना चाह रही कि भावना के हिसाब से। बस मैंने कहा समझ गई मैं, गणित के हिसाब से तो तौल के चढ़ाए जा सकते लेकिन एक एक चावल गिन करके पूरी भावना के साथ अगर चढ़ाना है तब तो फिर एक एक चावल के साथ भावना जुड़नी ही चाहिए, तभी वो 1 लाख से की गई पूजा उतनी देर मेरी भावनाएं निर्मल होंगी जब जब भी मैं एक एक चावल उठा के भगवान के सामने चढ़ाऊं। भावनाओं की निर्मलता महत्वपूर्ण है। और आज क्या हुआ, जहां भावनाओं की निर्मलता गड़बड़ाई वहां ढेर सारे प्रश्न खड़े हो गए। आज कितना वायलेंस है, कितनी वल्गरिटी है, कभी आपने सोचा? जब से समझदार होता है एक व्यक्ति तब से लेकर के 10-12 बरस से लेकर के 40 बरस तक हमारा टेलीविजन हमको क्या परोसता है, लगभग 40,000 वल्गरिटी के केस और 70,000 वायलेंस के केसेस वो हमें परोसता है और हमारे मन पर उन सब चीजों के प्रभाव पड़ते हैं, हमारी भावनाओं को वो कलुषित करता है। उसके बीच में हमें ट्रेवल करना है, मैं ये कह रहा हूं, उन तमाम विकृति और विषमताओं के बीच। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि कल से आप टेलीविजन ऑफ करके रखें, नहीं, खूब आराम से। मैं कौन होता हूं, आपने खरीदा है, मैं कौन होता हूं? लेकिन अगर वो सारी चीजें मेरी शांति को भंग करती हैं, मेरे चेहरे की चमक को गायब कर देती हैं, मेरे जीवन की सुंदरता को गायब कर देती हैं, तब तो फिर उन चीजों को बंद करने का निर्णय कोई और क्यों लेगा, मैं स्वयं लूंगा। ये मेरे भीतर, ये टैलेंट मेरे भीतर आना चाहिए, ये प्रतिभा मेरे भीतर जागृत होनी चाहिए कि मैं अपने निर्णय, अपने जीवन की चमक को बरकरार रखने के लिए स्वयं लूंगा, किसी और के निर्णय पर नहीं, किसी की बैशाखी नहीं लूंगा, मैं स्वयं अपने जीवन से। ये मेरे जीवन की चमक को, चेहरे की चमक को कम करने वाली चीजें हैं, बाह्यात चीजें हैं, छोड़ दो। मेरे भीतर वायलेंस, मेरे भीतर वल्गैरिटी पैदा करने वाली चीजें, मेरे चेहरे की चमक को गायब करने वाली चीजें हैं ये तो। आप अपने टैलेंट का, आप अपनी प्रतिभा का क्या ऐसा सदुपयोग करना पसंद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। आज हम अपनी भावनाओं को बालाए ताक, उर्दू का शब्द है, किनारे रख देना, कैसा नहीं कर रहे हैं? हमारी अंतरात्मा की आवाज जो हमारी भावनाएं हैं, फिर हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे बताइए? कंसंट्रेशन तो भावनाओं के द्वारा होता है, भावनाओं की निर्मलता के द्वारा होता है। जिसकी जितनी भावनाएं निर्मल है वो उतना कंसंट्रेट होगा अपने लक्ष्य के प्रति, वो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। नैतिकता का बल बहुत बड़ा बल होता है, ये ध्यान रखना। और हम वो खो दें और फिर चाहें कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सारी चीजें वो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? कोई कहने से तो आता नहीं कि मैंने कहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया आपके भीतर, आ गया क्या? आएगा कैसे? जब तक कि हमारे अपने जीवन में नैतिकता नहीं आएगी, हमारी भावनाओं की पवित्रता नहीं आएगी, तब तक नहीं आएगी ये सारी चीजें। और फिर अपनी भावनाओं के चलते हमने क्या करा? आज थोड़ा सा मैं 10 मिनट और लूं, मैं 10:15 बज गए, क्योंकि आगे का गड़बड़ाया गया, यदि मैं ज्यादा लूंगा ये तो मुझे ही देखना पड़ेगा। आप भले ही कह दें कि आज संडे है, लेकिन ये वाला वैसा संडे नहीं है आज। हाँ, ये इसमें तो बिल्कुल शेड्यूल टाइट है और बिल्कुल 1 बजे तो मैं, घड़ियां अगर सही होंगी तो ठीक 1 बजे यहां आ जाऊंगा, ये आप मान के चलिएगा। आप आएंगे या नहीं आएंगे मैंने कभी चिंता नहीं की इस चीज की, हाँ ना मैंने कभी ये चिंता की है कि इन पेपर वालों ने मेरी न्यूज छापी है कि नहीं छापी। काम करना, एडवर्टाइज कम करना, अपना काम करना, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं। पंक्चुअल रहना, कभी भी जो करना है उसके लिए। अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो मायने क्या कि आपके लिए 24 घंटे और 5 मिनट का दिन नहीं होगा, 24 का ही होता है। आप 5 मिनट लेट हुए हैं इसका मतलब है कि आपने अब आगे के दिन के लिए 23 घंटे 55 मिनट का बना दिया है, क्योंकि वो काम आपको कल करना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो दिन आपका जीरो हो जाएगा, आपको तो पेंडिंग के सारे काम, वो तो उस दिन का तो कुछ किए नहीं आपने। आप सोच रहे हैं इस चीज को? तो मैं ये कह रहा था कि इन भावनाओं की कलुषता के चलते हमने कितना कुछ करा। जैसे हमने कहा कि मिल्क इज ए जस्ट लाइक मीट, एग इज ए जस्ट लाइक वेज। कितना बड़ा ब्लफ, यही ना। खान पियन की चीजों में हमने इस तरह के आर्गुमेंट्स दे करके और अपने जीवन को कलुषित किया है। विचार करें हम, क्योंकि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास, आत्मिक विकास और आध्यात्मिक विकास, ये सारे विकास जरूरी हैं। अकेले शारीरिक विकास करने वाले पहलवान का तमगा लगा सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अकेले बौद्धिक विकास वाले बहुत सारी बेईमानियां करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास और आत्मिक विकास हुआ है, तब फिर आप अपने जीवन को बहुत सुंदर और सुगंधित बना पाएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि जब मैं शारीरिक विकास की चेष्टा करूं तो इस भाषा में ना सोचूं कि मुझे प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है और विटामिन्स कितने लेने, मिनरल्स कितने लेने हैं और वाटर इंटेक कितना है, ये जो छह चीजें जरूरी हैं, फैट वो कितना लेना है, इस भाषा में नहीं सोचेंगे। वरना तो आप देखेंगे कि एग में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन्स है और कितना मिनरल्स है और कार्बोहाइड्रेट तो निल है। आप फिर इस भाषा में सोचेंगे? ये भाषा नहीं है, ये आत्मिक विकास की भाषा नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर हो, चेहरे में चमक हो, इनसे नहीं आएगी चमक। चमक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से नहीं आती बाबा, आती होती तो बहुत लोगों को आ गई होती। ये हम जरूर अपनी भावनाओं में ध्यान रखें। मैं खाऊंगा तब भी भावना का ध्यान रखूंगा। तब क्या हुआ कि हमने एग को शाकाहार कहना शुरू किया और मिल्क को मांसाहार कहना शुरू किया। एक क्वेश्चन था बच्चों का, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। असल में कहना तो मुझे अपनी बात है, बहाना आपका है। आपने नहीं भी पूछा हो तब भी मैंने आपकी तरफ से पूछ करके क्वेश्चन पुट अप कर दिया, आंसर मुझे देना है। मुझे आप पर कोई चीज थोपनी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। मैंने आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि मैं अपने मुताबिक आपका जीवन बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। इस धोखे में नहीं रहिए आप कि मैं आपको यहां बुलाकर, आपको सम्मान देकर आपके ऊपर ये प्रेशर डालूंगा कि चूंकि मैंने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया इसलिए आपको ये सब करना है। नहीं, कृपा करके ऐसी हल्की सोच मत रखिएगा। हाँ, ऐसा सब संसार में होता है, लेकिन हमारा सोच वैसा नहीं है, ना हमारा होना चाहिए सोच। हमने तो सिर्फ एक क्वालिटी को जो आपने अचीव की है उसके लिए पीठ थपथपाई है, और इस आशा से कि आपके भीतर ऐसी बहुत सी क्वालिटी हैं, अगले बार जब मिलेंगे तो हम उन क्वालिटीज को भी आपके भीतर जनरेट होते देख सकें, इसके लिए और कुछ नहीं। हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं, इसलिए जितनी भी बातें आपको कह रहा हूं वो सिर्फ फॉर नॉलेज, और वो नॉलेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। नॉलेज वही है जो जीवन को परिवर्तित करे। ये आपका काम है कि उस नॉलेज का आप क्या यूज करते हैं। जनरली हमें ये लगता है कि एग वेज है, फर्टाइल एग हो चाहे अनफर्टाइल एग हो। डॉक्टर वेक्स्टर की किताब पढ़ें, सीक्रेट्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें आई एन एग एक चैप्टर है, उनका प्रयोग है। वे बहुत बड़े वनस्पति शास्त्री रहे हैं और उनकी लेबोरेटरी में उन्होंने प्लांट्स के साथ पॉलीग्राफ मशीन अटैच करके उनकी फीलिंग्स को रिकॉर्ड करने का बहुत बड़ा काम किया। और वे एक बार अपने कुत्ते को खिलाने के लिए दो अंडे अनफर्टाइल एग वाले के यहां से लेके आए हैं। वे उसे निर्जीव मान रहे हैं, ये सोच के लाए हैं, और उन्होंने जैसे ही अपने लेबोरेटरी के भीतर उस एक एग को ब्रेक किया, सारे पॉलीग्राफ मशीन जो जुड़ी हुई थी प्लांट से उन्होंने बहुत तेजी से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और ये कहा कि कोई हमसे ज्यादा हाई सेंस ऑर्गन वाला यहां पर मार दिया गया है। ये आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। फिर से अब की बार दो और एग लेके आए हैं उसी अनफर्टाइल एग वाले के यहां से, जिसको वो कह रहा है कि अनफर्टाइल एग, इसमें से चूजा नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म्स के कॉन्टेक्ट में आए नहीं है। एग एक्चुअली क्या है, वो चूजे की ओवरी है जिसपे कि स्पर्म के कॉन्टेक्ट होने के बाद फिर फर्टाइल होकर के और चूजा बनेगा। इंक्यूबेटर में अगर स्पर्म डालकर एग को रख दिया जाए 21 दिन के अंदर निकल आएगा चूजा, विदाउट स्पर्म्स नहीं निकलेगा। लेकिन वो है क्या चीज एग, वो निर्जीव नहीं है, वो उसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉ मटेरियल है जो उसमें चूजा अपनी बॉडी कंस्ट्रक्ट करेगा, वो यॉक। उसको हमने कह दिया कि शाकाहार है, यानी ये तो ऐसा हो गया जैसे कि जैसे हम अपने मां के पेट में यहां पर अपने बॉडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो चीज निकाल करके हम खाएं और कहें कि वेज है। अरे वाह, तब तो हमारे नॉलेज को तो हमें थोड़ा इंप्रूव करना पड़े। हां, ये नॉलेज तो जरा ठीक नहीं मालूम पड़ता। और वो वेक्स्टर कह रहे हैं कि दो एग लेके आया और उसमें से मैंने एक एग के साथ भी पॉलीग्राफ मशीन लगा दी, क्योंकि पॉलीग्राफ मशीन जहां जीवन है वहां काम करेगी, प्लांट्स में जीवन है पॉलीग्राफ मशीन इंडिकेशन देती है। ठीक ऐसे ही मैंने उस एक अंडे से भी पॉलीग्राफ मशीन गैल्वेनोमीटर से 10 गुनी सेंसिटिव होती है। और दूसरे वाले एग को लेबोरेटरी के उस छोर पर जाकर के ब्रेक किया तो सारे प्लांट्स ने तो कहा ही, और ये जो पॉलीग्राफ मशीन जो एग से लगी थी उसने भी इंडिकेशन किया कि मेरी ही जाति का, मेरे ही जितना कोई यहां पर मर गया है। तब उन्होंने लिखा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं ये क्या है, सीक्रेट्स ऑफ प्लांट्स, आई एन एग, मुझे साइंस समझ में नहीं आ रहा है, पर वहां जीवन है मैं ये कह सकता हूं। ये उन्होंने अपने उसमें लिखा। क्या इससे हमें फिर से अपने नॉलेज को और अधिक अच्छा नहीं बनाना चाहिए, हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या कि इसी विश्वास करके और हमें एग को शाकाहारी मान लेना चाहिए और मिल्क को हम मांसाहारी मान रहे हैं, जबकि आज तक किसी भी मिल्क में स्पर्म्स डाल के इंक्यूबेटर में रखने पर कोई बछड़ा नहीं निकला। निकला क्या अभी तक? नहीं, वो प्रकृति में किसी जीव को आगे रीजनरेशन के लिए नहीं आया है, वो तो जो रीजनरेट हुआ है उसके लिए पोषण के लिए है। मिल्क की कैपिलरीज और ब्लड की कैपिलरीज में बहुत फर्क है, तीनों की प्रोटीन में बहुत फर्क है। कैशीन मिल्क की प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ब्लड की प्रोटीन है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन का नाम है एग की प्रोटीन का नाम। क्या ये डिफरेंस हम नहीं करना पसंद करेंगे जबकि साइंस कह रहा है? बहुत सारी चीजें हैं भाई, मैं आपको क्या कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इन सब प्रश्नों के समाधान जो लोग दे रहे हैं उन पर एक बार जरूर विचार करना, और फिर इन सब चीजों का समाधान स्वयं खोजने की कोशिश करना, अपने खान पान रहन सहन इन सब चीजों में अपनी भावनाओं को मुख्यता देना। देखा देखी न पहनना ओढ़ना न खाना पीना, मेरी भावनाओं को जो निर्मल करेगा वो पहनूंगा ओढ़ूंगा वो खाऊंगा पीऊंगा, मेरा जीवन मेरे द्वारा रेगुलेट होगा दुनिया के द्वारा नहीं। दुनिया मुझे कैसा चलाना चाहती है वो जाने, मैं अपने जीवन को जैसा बनाना और चलाना चाहता हूं वो मैं जानता हूं, और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत मेरे अंदर क्लियर है, मेरा विजन बहुत क्लियर है कि मुझे अपने चेहरे की चमक और जीवन की शांति बनाए रखनी है। उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, उसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं, उसके लिए मैं जो भी कर रहा हूं मैं सब उसी के लिए कर रहा हूं। और लास्ट में जो टॉलस्टॉय की कहानी थी वो मुझे सुनानी है, फिर अपने को बैठ के नमोकार करना है, फिर आप जाएंगे, फिर पूरा हो जाएगा, फिर भी अधूरा रह जाएगा, फिर से मिलेंगे अपन। आप ऐसे नहीं बच सकते, अब आपका पता मेरे पास में, हाँ मैं आपको कॉल कर दूंगा, और आप मुझे विश्वास है कि मैंने आपको अपना माना है, तो आप भी मुझे अपना मानकर मेरी बात पर ध्यान दें। टॉल्स्टॉय ने ये मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण, मैंने पिछले बार भी इनको जब्त करके रखा था, अभी भी मैं इन सुखद क्षणों को अपने भीतर जब्त करके रखे। मुझे अपना साधु जीवन जितना अच्छा लगता है, मैं आपसे ईमानदारी से कहूं, मेरे अपने एजुकेशन के समय का जीवन भी मुझे बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता था, और इसी वजह से जब फिर से वही माहौल यहां देखता हूं तो मुझे लगता है मैं फिर से एक बार और सब अपने कलीग्स के बीच और फिर आ गया हूं, और हम अपने नॉलेज को इसलिए गेन कर रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि जितने भी 18 कलीग्स हमारे साथ थे, उनने कभी भी, हमें मालूम है कि कोई ऐसी शर्ट नहीं पहनी होगी, कोई ऐसा पैंट नहीं पहना होगा जो दूसरे की आंख को चुभे। हमारे जब साहब ने यह कहा था कि तुम लोगों ने क्या तय कर लिया है कि इसी तरह कपड़े पहनोगे, हमने कभी तुम लोगों को ऐसे देखे ही नहीं, बस बहुत सिंपल और सोवर, तो कैसे डिसाइड कर लिया, हम लोगों का ध्यान ही नहीं गया, पढ़ना हमारा लक्ष्य है, बाकी चीजें तो अपने ध्यान क्या करना उन चीजों का। इसलिए मुझे वो जीवन भी याद है, ऐसे ऐसे वाकया उस जीवन के हैं। अभी तो इंट्रैक्शन हो ही नहीं पाया इतने शॉर्ट पीरियड में, कभी बैठे और उन चीजों को एक दूसरे से मिल करके, आपके जीवन के भी अनुभव मुझे सुन करके अच्छा लगेगा, लेकिन क्या करें, बहुत सारी चीजें बहुत फॉर्मल हो जाती हैं ये चीजें, बहुत मैं तो सोचता था कि अनफॉर्मल, तो अनफॉर्मल के लिए तो यही है कि मेरा एड्रेस तो आपके पास है, आप अदा कर लीजिएगा, और फिर बिल्कुल अनफॉर्मली और अपन बैठ के उन सब चीजों को भी करेंगे। टॉल्स्टॉय ने एक ओ हेनरी बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छी उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, उनकी एक स्टोरी है द मास्टर पीस, ए लाइफ लास्ट लीफ, है ना, पढ़ी होगी शायद, बच्चों ने पढ़ी हो सकती, उसमें कोई विशेष नहीं है। एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो अपने अंडर में दो बहनों को और अपना आर्ट विरासत में देने की कोशिश करता है, और वो दोनों उसके पास में रहती हैं। एक दिन क्या होता है कि उसमें से एक बहन जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, वो खिड़की पे खड़ी हुई है और बाहर देखती है आंधी में, और सामने का जो पेड़ उसको बहुत प्यारा लगता है, उस पेड़ में से ढेर सारी पत्तियां टूट करके दूर उड़ जाती है। वो बहुत दुखी होती है, मेरा इतना प्यारा पेड़ और उसमें से इतनी सारी पत्तियां झड़ गई, मेरा इतना प्यारा जीवन इसमें से भी ऐसे ही एक एक करके सारे दिन खत्म हो जाएंगे, और एक ऐसा एसोसिएशन उसका हो गया कि जब जब एक पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी उतना ही नष्ट हो जाएगा, और जिस दिन इसमें से आखिरी पत्ती गिरेगी पेड़ में से, उस दिन मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सोच उसके भीतर आ गया, इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी, इसके बावजूद भी आ सकता है, अब क्या करें, वो तो बहुत डिप्रेस हो गई। अब वो जो बूढ़ा कलाकार है उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो कहती कि नहीं, अब क्या मतलब लाइफ का, रोज रोज उसमें से पत्तियां टूट रही हैं, रोज रोज जीवन समाप्त होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके वो अस्वस्थ होकर के बिस्तर पर पड़ गई। रोज खिड़की खुलती थी, आज कितनी और पत्तियां बची, बस थोड़ी और रही, थोड़ा जीवन और शेष रहा, वो अपने मरने का इंतजार कर रही। कभी कभी जीवन में अपनी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी जो एक निराशा आती है, सारा जो हार लगता है, उन क्षणों में क्या हमारे जीवन में ऐसे ही घटित नहीं होता होगा? क्यों? क्योंकि उस समय हमारे भीतर कोई आध्यात्मिकता नहीं है ना, आत्मिक जो हमारा ज्ञान है वो कम है, जिसका आध्यात्मिक और आत्मिक ज्ञान है वो इन क्षणों को ही आसानी से सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूं कि जीवन में कभी ऐसा घटित हो तब तब के लिए ये चीज अपने साथ बांध के रख लेना, कभी घटित ना हो मैं तो भावना यही भावूंगा। सब अत्यंत प्रसन्नता से अपने रास्ते पर आगे बढ़े, अपने जीवन को अच्छा बनाए, पर ऐसा कभी क्षण आए तब क्या करना। और उसके जीवन में ऐसा क्षण आ गया। सब समझा रहे हैं लेकिन कहां कौन समझ पाता है, जब तक कि खुद ना समझे तब कोई उसको कौन समझा सकता है। एक दिन ऐसा हुआ कि कर्टेन डाल दिए गए, उपाय यही किया जाएगा कि खिड़की नहीं खुलेगी, कर्टेन पड़े हुए हैं, खिड़की खुलेगी भी तो हवा के लिए खुलेगी, रोशनी नहीं आएगी, कर्टेन इतने हैवी कर्टेन है वो बाहर ना देख पाए। लेकिन उसका मन तो होता था कि बाहर देखूं कितनी लीफ और बची हुई है। और एक दिन सबके मना करने पर भी उसने खिड़की से झांक के देखा तो पेड़ पर सिर्फ एक पत्ती थी, द लास्ट लीफ। उसने कहा कि बस आज का दिन आखिरी है, और वो लेट गई। बाहर आवाज आने लगी बहुत तेज तेज पानी गिरने की, बहुत तेज तेज हवाएं चलने की, और उस बीच उसके भीतर भी तेज तेज हवाएं चल रही हैं कि इतनी इतनी विषमताओं और विकृतियों के बीच अब तो वो जीवन नष्ट हो ही जाएगा, अब तो वो पत्ती गिर ही गई होगी, मैं सुबह उठ के देखूंगी और शायद मैं सुबह उठ के देख भी ना पाऊं, शायद वो इस आंधी पानी में रात में ही पत्ती, और जैसे ही वो पत्ती गिरेगी मेरा जीवन भी पूरा हो जाएगा, ऐसा उसने सोच लिया। अब कलाकार जो कि बूढ़ा हो गया था, उसने बहुत दिन से कोई कृति नहीं बनाई थी अपनी, कोई आर्ट नहीं बनाया था उसने। लोग उससे कहते थे कि तुम कोई आर्ट क्यों नहीं बनाते, वो कहता था कि मैं बनाऊंगा ये मास्टरपीस, एक ही पीस और बनाऊंगा, वो मेरा मास्टरपीस होगा, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, अपने जीवन का वो मेरा आखिरी आर्ट होगा। और उसने सोच लिया और वो लालटेन और सीढ़ी लेकर के बाहर निकल गया उस आंधी पानी तूफान में, और उस पेड़ के पीछे एक बहुत बढ़िया दीवाल थी, उस पर सीढ़ी लगा करके उसने अपना काम शुरू कर दिया। सारी रात आंधी पानी तूफान में उसने क्या बनाया, कौन सा आर्ट बनाया, वो दीवाल और पेड़ इस तरह से थे कि उसने दीवाल पर एक लीफ बनाई, बहुत सुंदर सी एक पत्ती। लेकिन कैसे, ऐसे जैसे कि पेड़ पर लगी हुई हो, पेड़ पर लगी हुई ऐसे बनाई, और इतनी आधी पानी तूफान में सारी रात गुजारने पर जब वो वापस लौटा तब तक इतनी वृद्धावस्था होने से जीवन पूरा हो चुका था। लालटेन नीचे रखी है, सीढ़ियां वहां पड़ी हैं, और वो आराम से वहीं चिर निद्रा में सो गया। सुबह वो आर्टिस्ट उसे जगाया तो उसने आंख खोली, मैं अभी जिंदा हूं, कहा कि हां, तो उस पेड़ की पत्ती का क्या हुआ, देखो वो तो गिरी गई होगी, नष्ट हो गई होगी, आधी पानी रात में बहुत गिरा है। लेकिन उसने जैसे ही खिड़की खोली और वहां सामने दिखा कि अभी भी पेड़ पर वो पत्ती ज्यों की त्यों, अरे इतने आंधी पानी तूफान में भी पेड़ की पत्ती नहीं गिरी, मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, इतनी तूफान में भी नहीं, इतने तूफान में भी मैं जी, पेड़ की पत्ती अगर सरवाइव कर सकती है तो मैं भी नहीं मरूंगी। और उसके भीतर वीटल पावर, उसके भीतर का साहस जागृत हो गया, और वो भाग करके और अपने उस बूढ़े कलाकार के पास जाना चाहती बताने के लिए कि अब मैं बनाऊंगी बहुत बड़ा आर्ट बनाऊंगी, अब मेरे भीतर तो ये चीज जागृत हो गई है। और पहुंचती है तो बूढ़ा आर्टिस्ट खत्म हो चुका है, उसने कौन सा आर्ट बनाया जिस पर वो लिख के गया था कि मास्टरपीस, उसका वो आखिरी आर्ट था, वो वाकई मास्टरपीस था, जिसने कि दूसरे हारे हुए को साहस दिया, जिसने मरते हुए को जीवन दिया। क्या ऐसा आर्ट और ऐसा साइंस हमारे भीतर डेवलप हम करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और हमारे आसपास का परिवेश बहुत साहस से भरा हुआ, सुगंधित और सुंदर हो, हमारा ज्ञान इस काम में आए, हमारी कला इस काम में आए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। भैया अब अपन बैठ करके एक साथ नमोकार कर लें, पता नहीं फिर कब इस तरह अपन बैठेंगे, एक साथ बैठ करके नमोकार करेंगे। इसी भावना के साथ कि हमारा जीवन जो हमने अचीव किया है उसका हम प्रॉपर यूसेज कर सकें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें। नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। नमो लोए सौसाहूणम्।